ఓం శాంతి. గుడ్ ఈవినింగ్. హమ్ సభీ జో బాబాకే బచ్చే హ వో బహుత్ 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 జితనే భీ బహుత్ లగా లే భాగ్యవాన్ హై. ఇసిలియే క్యూంకి కై బార్ మే సోచతీ హూ లోగ్ దునియా మే బహుత్ కష్ట మే హై, బహుత్ ప్రాబ్లమ్స్ హై, బహుత్ సారే సమస్యాఓ కే బీచ్ ఘిరే హువే హై. హమే భీ థోడా బహుత్ ప్రాబ్లమ్స్ హోంగే, పర్ హమ్ ఫిర్ భీ ఆరామ్ సే రహ రహే రహ రహే నా. క్యూ? క్యూంకి హమ్ సబ్కో ఏక్ విశ్వాస్ హై, ఏక్ సపోర్ట్ హై, ఏక్ ఆధార్ హై, వో హై బాబా బైఠా హై హమారే సాథ్. కౌన్ హై? కౌన్ హై? బాప్ దాదా. తో వో బాప్ దాదా కే నామ్ సే హమ్ అప్నే సారే ముష్కిలోన్ సే ఆసానీ సే పార్ హో జాతే హై. పర్ కై బార్ లగ్తా హై కి బిచారే దునియా వాలే కిస్ ఆధార్ పర్ అప్నీ జిందగీ గుజార్ రహే హై. కోయి ఆధార్ హీ నహీ హై, కోయి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ హీ నహీ హై ఉన్కే పాస్. తో హమ్ సాధారణ రూప్ మే భగవాన్ కే సాథీ బైఠే హై. స్వయం భగవాన్ అప్నా సాథీ చునా. హమ్నే బాబా కో చునా యా బాబా హమే చునా? తో వో అప్నా సాథీ చునా. హమ్నే భగవాన్ కో నహీ చునా. భగవాన్ నే కిస్కో చునా? తో భాగ్యవాన్ కౌన్? కౌన్ హై? కితనే భాగ్యవాన్? బహుత్ మనా కితనా? జ్ఞాన్ సరోవర్ జితనా భాగ్యవాన్ హై? ఇస్ భాగ్య కా కోయి తులనా హీ నహీ హై. క్యూంకి జిస్ భగవాన్ కే నజర్ హమ్ పర్ ఠహర్ జాయే, ఏక్ తో పడనా, పర్ వో పడ్ కర్ కే వో నజరే హమారే ఉపర్ టిక్ గయే. జో పురానే జమానే మే రాజే మహారాజే హోతే థే నా, ఉన్కే జులూస్ నికాలా జాతా థా. ఔర్ రాజా మహారాజా ఐసే బైఠే రహతే థే, ఉన్కే నజర్ ఇధర్ ఉధర్ నహీ జాతా థా. అగర్ కహీ ఉన్కే నజర్ పడ్ గయీ తో బహుత్ కీమతీ చీజ్ హోతీ, క్యూంకి రాజా మహారాజా కే నజర్ పడే. ఔర్ నజర్ పడీ ఔర్ నజర్ ఉస్ చీజ్ పర్ టిక్ గయీ, మనే బహుమూల్య చీజ్ హై. తో వో రాజా ఐసా ఇషారా కరేగా బస్, తో వో హాసిల్ కరేగా. రాజా కిసీ భీ కీమత్ పర్ హాసిల్ కరేగా. వో రాజా హై, ఇన్సాన్ హై, పర్ హమారే ఉపర్ కిస్కే నజర్ పడే? ఔర్ న కేవల్ నజర్ పడీ, వో టిక్ గయీ. ఔర్ టిక్ గయీ మాయా కే ధూప్ సే, హజారో భీడ్ మే సే బాబా ఐసే చున్కే ఉఠాకే లే ఆయే, ఐసే చున్కే ఉఠాకే లే ఆయే. ఔర్ హమే ఖుద్ కో భీ పతా నహీ థా. పతా థా? తో భాగ్యవాన్ కౌన్? ఆవాజ్ హీ నహీ హై. ఐసా లగ్తా హై న పేట్ భర్ కే ఖాయా నహీ, పేట్ భర్ కే సోయా నహీ. ఔర్ ఇతనే భాగ్యవాన్ హై బాబా, నా కేవల్ ఇస్ జన్మ కే లియే భాగ్యవాన్ బనాతే హై, కై జన్మో కే లియే హమే భాగ్యవాన్ బనాతే హై. ఔర్ ఇస్ సంగమ యుగ్ కే జో హమారే ఎయిమ్ హై, లక్ష్య హై, వో హై హమే ఇస్ శరీర్ మే హోతే, ఇస్ శరీర్ కే కర్మేంద్రియో కే కోయి భీ అసర్ మాలిక్ పర్ నా పడే. నంబర్ వన్ బహుత్ బడియా. ఐసే సంసార్ మే కోయి భీ ధర్మ, శాస్త్ర, వేద, పురాణ మే లిఖా హీ నహీ హై. జో ఈశ్వర్ హమ్కో వో సాధనా సిఖాతే హై. ఆత్మా ఇస్ శరీర్ కే భీతర్, ఇస్ కలియుగ కే అంతకాల్ మే, యే పురానే పతిత దునియా మే, పతిత శరీర్ మే రహతే, ఇస్ శరీర్ కే కర్మేంద్రియా ఆత్మా కే ఉపర్ కోయి అసర్ నా కరే. యే హమ్నే దాదీజీ కో రియల్ బాబా అమ్మా కో తో నహీ దేఖా, హమ్ తో 70స్ మే జ్ఞాన్ మే ఆయే, बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहिनी, दादियाँ थी जो हमारे सामने सामने से गए। पूर्वावस्था वो स्थिति हमने देखी, बहुत हाईएस्ट स्थिति है। शरीर को कुछ हो रहा है, इसका कोई असर आत्मा पर, मन पर, मन के स्थिति पर, मन की खुशी पर नहीं पड़ रही है। क्या जबरदस्त अवस्था। प्रॉब्लम है, संबंध है, संबंध में किरकिरी है, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। क्या जबरदस्त स्थिति है, क्या योग की अवस्था है। राजयोग की द हाईएस्ट अटेनमेंट, ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कि स्वयं मैं अपने पर मैं राजा हूं, जिसका कोई असर मुझ पर नहीं पड़ रहा। अगर इस संसार का बना हुआ, इस शरीर का कोई भी चीज मुझ आत्मा पर असर नहीं करता, तो इस संसार की भी कोई चीज, कोई बात आत्मा पर वास्तव में असर नहीं करती। आत्मा पर कोई भी बात, कोई इंसान, कोई परिस्थिति का असर तब होता जब हमारे अंदरूनी दुनिया डिस्टर्ब्ड है। देयर आर टू वर्ल्ड्स, दो दुनिया है। ध्यान से सुनेंगे, मैं बताऊंगी कब सोना है, तब तक नहीं सोने का, ठीक है। दो दुनिया है, एक वो दुनिया जिन आंखों से हमें दिखाई देती है, ओके? दुनिया है, दुनिया की चीजें हैं, दुनिया के लोग हैं, जो हम दिखाई दे रहा, हम जो जी रहे हैं। एक वो दुनिया है जो अंदर है, हमारे भीतर। इसको इनसाइड वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया कहते हैं, जिसमें हमारे सोच है, विचार है, आइडियाज है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे भावनाएं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, हमारे भाव है, हमारे वृत्तियां हैं, हमारी इच्छाएं, पसंद नापसंद। बहुत बड़ी दुनिया है, एक जाल है अंदर। अब हम इस ईश्वरीय जो यात्रा है, वो इस संसार की कोई बातों को हमको टक्कर लेना ही नहीं है, उससे कोई हमारा लेना देना ही नहीं है। सारा पुरुषार्थ जो है उस अंदरूनी दुनिया के ऊपर जीत पाने की है। इस बाहर की दुनिया पर जीत पाना नहीं है, कोई इंसान पर जीत पाने की नहीं है, मेरी जो अंदरूनी दुनिया है उस पर जीत पाना। ओके? अब इस इतनी बड़ी दुनिया जो अंदर है, उसमें से दो बातें हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये दो बातों को हम परिवर्तन कर देंगे, इसको शक्तिशाली बना देंगे, उसको दिव्य बना देंगे, हमने जीत पा ली, जगत जीत हो गए। अच्छा, मैं आपको एक एक छोटा सा एक्सरसाइज देती हूं। लंबा श्वास ले, डीप ब्रेथ, वेरी गुड। आंखें बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखें, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, और आपके अंदर के फीलिंग्स को देखो। मेरी फीलिंग्स किस तरह के, किस स्तर के फीलिंग्स हैं? मैं जब से बाबा का बच्चा बनी हूं, तब से मेरे अंदर के फीलिंग्स, जब मैं लोगों को देखती हूं, नहीं देखती हूं, लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, मैं कैसा फील करती हूं, और सवेरे से मैं कैसा फील कर रही हूं। चलो आज के ही दिन ले ले, मेरी फीलिंग्स में सवेरे से लेकर अभी तक कोई गलत फीलिंग, जबकि हम भट्टी में आए हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ फीलिंग क्या थी, खुद देखें। डीप ब्रेथ, ओपन योर आइज, आंखें खोले। हमारे जो सारा आध्यात्मिक योग अभ्यास है वो हमारे फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। योग क्या है? बाबा का प्यार को फील करना। सोचना योग नहीं है, देखना योग नहीं है, सुनना योग नहीं है। आपने लाल देख लिया, स्टार्स देख लिया, सितारे देख लिए, ब्रह्मा बाबा को देख लिए, कुछ नहीं होगा। देख लिया सो क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखने के पहले जैसे थे, देखने के बाद भी हम वैसे होंगे। पर जो हम फील करते ना बाबा का प्यार शक्ति के, वो फीलिंग्स हमेशा हमारे साथ रह जाएगी। तो योग जो है वो हमें महसूस करना है, फील करना है, सुनना सोचना नहीं। जब आत्मा महसूसता में चली जाती है, सोच का स्पीड कम हो जाता है। हम बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, आज फिर से मैं बोल देती हूँ। मान लीजिए गुलाब जामुन कैसा बनाना, मैं बहुत अच्छी तरह से बोल सकती हूँ, जैसा किताब में लिखा है ना, इससे बढ़िया बोल सकती हूँ। वो ऐसे करते हैं, उसमें वो डालते हैं, जो भी इन व्हाटएवर, बहुत इतना अच्छा सा मैं वर्णन कर सकती हूँ। वर्णन करते करते आपके मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, बनाना नहीं आता मुझे। आधा घंटे तक गुलाब जामुन कैसे बनाया जाए मैं बोल सकती हूँ। अब एक और व्यक्ति है जिनको इतना बोलना नहीं आता है, पर वो बनाती बहुत अच्छा गुलाब जामुन। वो एक मिनट भी नहीं बोलेगी, वो बना करके वो गुलाब जामुन आपके मुंह में डाल देगी। फिर आधा घंटा बोलने की आवश्यकता है? जब गुलाब जामुन मुंह में आएगा तो खाने वाले को वो सोचेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो क्या करेगा, क्या करेगा, उसके स्वाद में जाएगा, और वो स्वाद में खुद ब खुद ज्ञान आ जाएगा। हाँ, उसमें शक्कर भी पड़ा है, उसमें मावा भी है, उसमें इलायची भी है, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो स्वाद के अनुभव में खुद ब खुद खाने वाले को समझ आ जाती है। अब आधा घंटा जो मैं गुलाब जामुन की विधि बताई वो बेहतर है, या जो दूसरी बहन ने वो गुलाब जामुन बना के आपके मुंह में रखा वो बेहतर है? क्या बेहतर है जी? एक्सपीरियंस, अनुभव जो है गुलाब जामुन अगर मुंह में होंगे, सोचने की क्या आवश्यकता, बोलने की क्या आवश्यकता, वो अनुभूति है, वो स्वाद है। तो योग माना स्वाद, इट्स अ टेस्ट, फीलिंग। अगर हम योग में बैठते वो फीलिंग नहीं आई, वो टेस्ट नहीं आया, तो हम तो आधा घंटा बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे, मैं आत्मा हूं, मैं फलानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अनुभूति नहीं है, वो टेस्ट नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा। अब हमको संगम युग के जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो फरिश्ता बनना, मतलब वो स्थिति हम इस शरीर में होते अनुभव करना है जो बहुत हाईएस्ट टेस्ट है। ये वो वाली टेस्ट है जो लोग वो फरिश्ते को भगवान के रूप में देखते, बल्कि भगवान तो दिखाई नहीं देता, है कि नहीं, निराकार है ना, दिखाई नहीं देते। पर ये फरिश्ते, इसीलिए दुनिया में भी लोग जो है धर्मों में भगवान, फरिश्ते को भगवान मानते हैं, अच्छे से अच्छी चीज को फरिश्ता मानते हैं, द बेस्ट इन द बेस्ट फरिश्ता है। नंबर वन, फरिश्ता हमेशा अव्यक्त। कोई स्थूल फरिश्ता है कि फरिश्ता हमेशा अव्यक्त होता है? अव्यक्त होता कि स्थूल भी होता है? स्थूल भी होता है। हाँ, जैसे आप सब है ना, सचमुच में आप सच में स्टेज पर आके देखेंगे ना, ऐसा लगता है सारे फरिश्ते बैठे, सिर्फ वो पंख दिखाई नहीं दे रहे, नहीं तो उड़ ही जाते है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवे, जो लोगों की बहुत मदद करता है, उनको भी फरिश्ता मानते हैं, बगैर कोई अपेक्षा के कोई हमें मदद दे जाते हैं उनको फरिश्ता कहते हैं। भाई ये तो फरिश्ता जैसे आए हमको मदद करके चला भी गया, अपना नाम तक भी नहीं बोला, है ना। फरिश्ते हैं, उसको फरिश्ता मानते हैं, पर जरूरी नहीं है वो फरिश्ता भगवान का क्रिएशन है, भगवान का बनाया हुआ फरिश्ता है, वो अपने हिसाब से है। पर ये हम जो है वो हमें भगवान डिजाइन कर रहा है, बैठ करके हमको बना रहा है। वो अव्यक्त फरिश्ता रूप में हमारे सीरत है, सूरत है, हर प्रकार से जो है ये भगवान के रेप्लिका है, भगवान के प्रतिबिंब है फरिश्ता। जैसे हम अपना चेहरा आईने के दर्पण के सामने देखते हैं ना, तो अपना ही जो अक्स है, अपने ही जो रिफ्लेक्शन है दिखाई देता है, कोई डुप्लीकेट तो होंगे नहीं। ऐसे फरिश्ते भगवान के प्रतिरूप होता है। अब इसमें सिर्फ व्यक्त जो इंसान है और फरिश्ते में दो बातों का अंतर है। नंबर वन, एक है भावना। भावना, यहां किसी का नाम है भावना? आपका नाम भावना है, बहुत अच्छा, पर मैं इस भावना की बात नहीं कर रही। भावना माना फीलिंग्स, ओके। क्योंकि हम हर कुछ जो करते हैं ना संसार में, वो अच्छा फील करने के लिए करते हैं। अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हैं? अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा फील होगा। अच्छा खाना खाते हैं तो क्या होगा? अच्छा फील होगा। अच्छी चीजें हम हाथ में, अच्छा मोबाइल लेके चलते हैं, हमको अच्छा लग रहा होता है, अच्छा फील हो रहा होता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं, रखते हैं, वो हम अच्छा फील करने के लिए। पर ये जो फीलिंग्स हम अपने अंदर डेवलप क्रिएट करते हैं, वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के आधार पर है, डिपेंडेंट फीलिंग्स है। आप मेरे से अच्छा व्यवहार करो, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। आप मेरे बर्थडे पे विश करो, मुझे अच्छा लगेगा। आप ऐसा नहीं करो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे अच्छे जो फीलिंग्स है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे अनुसार आप नहीं होंगे तो फिर मुझे अच्छे फीलिंग्स नहीं होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे तो मैं अच्छा फील करूंगी। मेरे अनुसार लोग सुनते हैं तो मैं अच्छा, तो ये सब डिपेंडेंट है। पर शिव बाबा जो हमको योग सिखलाते हैं, वो व्यक्ति कैसा भी हो, वो हो या ना हो, परिस्थितियां हो या परिस्थितियां ना हो, चीजें हो या चीजें ना हो, पर मेरे अंदर के जो फीलिंग्स मैं स्वयं क्रिएट करती हूं बाबा के याद से, बाबा के मदद से, वो कायम रह जाते हैं। वो डिपेंडेंट नहीं, आप कैसा भी व्यवहार करो, इससे मेरा कोई लेना देना, वो आपका हिसाब है, ये मेरा हिसाब है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हम अंदर अपने अंदर डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो शाश्वत है, हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये हमारी स्थिति बन जाती है शांति वाली। अभी शांति के फीलिंग्स है तो शांति की स्थिति। अच्छा, हमारे जो भी चेहरे पर हाव भाव है, जो भी हम बोलते हैं, हमारा व्यवहार है, हमारे जो भी बोलचाल, जो कुछ भी हम बाहर इंसान का देखते हैं, वो इंसान के अंदर के फीलिंग्स उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव पर, उनके बोल पर, उनके उनके व्यवहार पर दिखाई देता है। अगर आपके फीलिंग्स अच्छी है तो अच्छे व्यवहार करेंगे, फीलिंग्स अच्छी नहीं है तो व्यवहार अच्छे नहीं होंगे ना। नंबर वन इज फीलिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम योग भी अच्छी फीलिंग्स हमेशा रहने के लिए तो लगा रहे हैं, ऑल टाइम गुड फीलिंग्स, यही तो योग है ना। सेकंड, हमारे फीलिंग्स के ऊपर एक और चीज निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा भाव। एक है भावना, एक है हमारे भाव। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैंने जो ये बोला, मेरा ये भाव नहीं था, मेरा भाव आपको हर्ट करने का नहीं था। भाव अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य। हमारे अंदर के जो संकल्प है, जो हम सोचते हैं और हम बोलते भी हैं, जो हम करते हैं बगैर कोई उद्देश्य के नहीं होता। There are no thoughts without an intention. तो हमारे जिंदगी भर का जो फल हमें मिलता है, चाहे लौकिक में, भक्ति में, ज्ञान में, ये भावना और भाव के फल ही मिलता है, कर्म का फल नहीं मिलता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। कर्म के फल कभी नहीं मिलते। वो कर्म किस उद्देश्य से किया गया है, किस भाव से वो कर्म किया गया है, कितने भावना से वो कर्म किया गया है, उसका फल है। भगवान भावना का भाड़ा देता है, कर्म का भाड़ा नहीं देता। आप यज्ञ में, आप भंडारे में आप 10 रुपया डाल रहे हो, 10 करोड़ डाल रहे हो, भगवान के पास 10 रुपया का या 10 करोड़ का हिसाब नहीं है। किस भावना से डाला और किस भाव से डाला, उसका भाड़ा भगवान आपको देगा, कर्म का नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ओके? या कोई डॉक्टर्स है क्या? सॉरी, एनी डॉक्टर हियर? जस्ट वन? ओह या, टू, ओके। एक छोटा सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके जो बैग है ना, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है? या आपके गले में हार है सोने का, वो सब आपने सोना पहन रखा है, किसी व्यक्ति ने देखा और वो सोना, वो डायमंड का जो भी आपने पहना, हीरों का हार पहना है, उसको चुराने के लिए आपके पीछे लगा, आप क्या करेंगे? आओ भैया, ले लो, दे देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे माताएं? हीरों का हार तो आप पहनती हो ना, बताओ क्या करेंगे? दे देंगे। हाँ, आप लड़ेंगे, वो कश्मा कश्यप में वो उसको तो गुस्सा आता है ना, भाई चोर है वैसे, वो आपका गला काट के हीरों का हार उठा के भाग जाता है। अच्छा, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे जो आपका गला भी काट दिया, हीरों का हार भी चुरा के ले गए, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को? चोर बोलेंगे। चोर के साथ साथ उसने तो आपका तो गला काटा, आपको मार डाला ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो उस कर्म का फल क्या होगा? उसका कर्म का फल उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? उसको जेल होगा, सजा मिलेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको थायराइड हुआ, यू नो, थायराइड का ग्लैंड यहां होता है, बहुत आपको उसके लिए टैबलेट खाया, वो किया, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है आपको ना बहन जी सर्जरी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है भैया, कर लो, मेरे को तो ठीक करो। तो उस डॉक्टर को पैसा दे करके गला कटवा के आते हो, डॉक्टर ने भी गला काटा, ये चोर ने भी गला काटा, कर्म तो दोनों को एक ही है ना। हो सकता है वो चोर वो सर्जिकल ब्लेड से ही काटा हो, जिस ब्लेड से डॉक्टर गला काटा, दोनों ने गला काटा, एक को आपने पैसा देके गला कटवा के शुक्रिया शुक्रिया करके गिफ्ट दे रहे हो, और दूसरे ने भी बेचारा फ्री में काट के गया, उसको आप सलाखों के पीछे डाल रहे, क्यों? कर्म तो एक ही है, पर फल दूसरों के लिए दो अलग अलग क्यों, जब कर्म एक है? डॉक्टर ने जो गला काटा पैसा दे लेके, वो जान बचाने के लिए था, गला काटना कर्म है, उस कर्म के पीछे उद्देश्य है, जिसको भाव कहा जाता है। भाव शुभ है, भावना शुभ है, वो भगवान के समान कहा जाता है। अब वो व्यक्ति ने जो गला काटा, उसका भाव गलत है, नुकसान पहुंचाने की भावना है, इसलिए उसका फल जो है उसको सजा मिली। तो हर कर्म का फल नहीं मिलता, कर्म के पीछे भाव और भावना का फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता वो बनते हैं स्थिति हमारे लौकिकता से, इस संसारिक दुनिया से एक अलौकिक अव्यक्त फरिश्ता हम तब बनेंगे जब ये दो बातें शुभ और शुद्ध होगा, शुभ भावना और शुद्ध भावना, शुभ भाव और शुद्ध भाव होगा। अब एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चैलेंज है, हम योग में बैठते हैं तो हम सब शुभ शुभ सोचते हैं, सोचते हैं ना शुभ शुभ, क्या शुभ सोचते हैं योग में? अशुभ कौन कौन सोचता है योग में बैठ के? अशुभ कौन सोचता है? अशुभ, अशुभ समझ रहे हैं? अशुभ कौन सोचता है? वेरी गुड। शुभ कौन सोचता है योग में? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फरिश्ता वो है, हम बहुत बार सुन चुके हैं कि कोई रिश्तों से उनका कोई, लोगों से उनका कोई रिश्ता ना हो, फरिश्ता है। गलत है, गलत इन द सेंस रिश्ता ना होना फरिश्ता नहीं है, सबके साथ रिश्ता अच्छा होना फरिश्ता है। एक के साथ भी आपका रिश्ता खराब हो, सबके साथ, अभी यहां 100 लोग बैठे, 100 में से 99 साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, बट ये जो है ना भाई जो पानी पी रहा उनसे हमेशा मेरा लड़ाई है, हमेशा झगड़ा, 36 का आंकड़ा है। अभी मैं जब भी योग में बैठूंगी मुझे मेरे मन के सामने कौन आएगा? क्या नाम है भैया आपका? हाँ, जयेश भाई, जयेश भाई आएंगे। मैं क्या सोचती हूँ, भैया ये मेरे सामने ना आए ना आए ना आए, पर वही आएगा। जितने बार हम बोलेंगे वो ना आए कौन है मेरे मन में? 99 लोग नहीं आ रहा जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, एक व्यक्ति यहाँ बैठ करके बहुत दिमाग खा रहा है, वो कौन है? कौन है? जयेश भाई, सॉरी भैया। एक व्यक्ति के साथ भी हमारा संबंध खराब है वो बॉदर करेगा। इसलिए बाबा बहुत अच्छी युक्ति हमको ये बताते हैं, सबके साथ अच्छा संबंध रखो, और वो तब संभव है जब हर एक व्यक्ति के साथ हमारी भावना, फीलिंग्स गुड हो। वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वो उसका कर्म है, मुझे उसमें नहीं जाना। और मेरा धर्म और मेरा कर्म यह है कि मुझे उनके प्रति अच्छा सोचना, तभी तो मैं ब्राह्मण हूं। जो व्यक्ति सभी के प्रति अच्छा नहीं सोच सकता ब्राह्मण नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग शब्द है पर सच तो यही है। एक कलयुगी व्यक्ति और एक संगमयुगी ब्राह्मण का अंतर क्या है? सोच में ना, वस्त्रों में तो नहीं। सफेद कपड़ा पहन लिया, वो आज बड़ा बड़ा आजकल वो पहन लिया तो मैं ब्राह्मण हो गया, ऐसा तो नहीं ना। मेरे अंदर का जो सोच है हर व्यक्ति के प्रति क्या है? अभी आप मेरे से प्यार से बात करते हो, मैं भी प्यार से बात करती हूँ, तो दुनिया में भी है। आप झगड़ा करेंगे हम भी करेंगे, दुनिया में भी करते हैं। आप मुस्कुराएंगे हम भी मुस्कुराएंगे, दुनिया में भी करते हैं। आप क्या भी करो, आप मुझे नफरत करो, मुस्कुराओ, मुंह फेरो, पर मुझे आपके प्रति अच्छा ही सोचना, ये मेरा धर्म भी है, कर्तव्य है, कर्म है। क्यों? कि मैं ब्राह्मण हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। अगर ये नहीं कर पाते हम फरिश्ता नहीं हो पाएंगे। एक है रियल फरिश्ता बनने के लिए चार प्रकार की भावना है, बल्कि पांच प्रकार की भावना, ध्यान से सुनेंगे, ये पांच प्रकार की भावना बहुत आवश्यक है। अगर ये चार पांच प्रकार की भावना है तो हम फरिश्ता है। अगर ये पांच प्रकार हम फरिश्ता, बहुत दूर दूर से हमारा रिश्ता नहीं है, ओके? और जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, जिसको हम सद्भावना की बात, बड़े वो आजकल वो करते ना सद्भावना की रैलियां निकलते हैं, सद्भावना के बारे में बहुत सारे भाषण करते हैं, पर वो भावना ही तो है ना। तो ये सद्भावना और सद्भावना क्या है, ये फरिश्ता कौन बन सकते हैं जिनके अंदर ये पांच प्रकार के भावना है। ध्यान से सुनेंगे। नंबर वन, कोई कैसा भी हो, चाहे लौकिक हो, प्लीज अंडरलाइन करें, चाहे अलौकिक हो, क्योंकि जिनके कर्म का हिसाब किताब लौकिक में कम होंगे ना, अलौकिक में बहुत ज्यादा होंगे। जो टक्कर नहीं हुए होंगे लौकिक में, जो बातें लौकिक में नहीं सुने होंगे, जो लौकिक में बातें नहीं हुए होंगे, वो सब अलौकिक में होगा। पर होना कहीं तो होना ही है, क्योंकि हम इतने सारे जन्मों में पापड़ बेल के जो आए हैं, हैं जी, खाएगा कौन जी, किसने पापड़ बेला तो खाएगा कौन, खुद तलो खुद खाओ, हैं जी। आपने 50 पापड़ बेले 50 ही खाओ, किसी ने 100 बेले हैं 100 खाएंगे, किसी ने 4 पापड़ बेले हैं 4 ही खाएंगे, पर खाना तो पड़ेगा, है ना। एनीवे, नंबर वन, कोई कैसा भी हो, चाहे लौकिक चाहे लौकिक, मेरे बहुत करीब वाले हो दूर वाले हो, सबके प्रति बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे प्यारा फीलिंग है, और वो है अपनापन। यू नो द बेस्ट फीलिंग एवर वी कैन हैव फॉर समबडी, वो अपनापन, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन। भगवान ने भी हम सबको सबसे पहले ये फीलिंग दिया कि तुम जैसे भी हो, तुम जो हो, तुम मेरे अपने हो। और द वर्स्ट फीलिंग पता है, सबसे खराब फीलिंग क्या है, रिजेक्शन। तुम चले जाओ, यू नो, मैं आपको देखना भी नहीं चाहती, ये रिजेक्ट करना, तुम हमारा अपना नहीं हो, तुम अलग हो हम अलग है, ये बहुत खराब फीलिंग है। और भगवान जो सर्वशक्तिमान है, शिव बाबा पिता है, परमात्मा पिता ने यहां बैठा हर बच्चे को सबसे पहले ज्ञान नहीं दिया, वो ज्ञान का भी जो फाउंडेशन तैयार किया वो अपनापन। तुम जो हो जैसे हो, बहुत सारे गलतियां हैं हमारे में, 63 जन्मों के पाप करके आए हैं, पतित है, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे हो, तुम जैसे भी हो तो मेरा बच्चा, बल्कि यहां तक बोला तुम मेरे सिरमोर हो, आंखों के तारे हो। अरे दुनिया में अपने माँ बाप भी अगर कोई बच्चा गलती करता है उसको बेदखल करते हैं, तो मेरा बच्चा ही नहीं है। भाई बहन भी कोई गलती करते कहते तो मेरा चेहरा नहीं दिखाना, तो मेरी बहन नहीं हो, बोल देते हैं ना, मुंह पर बोल देते हैं। और पति पत्नी तो डिवोर्स ही कर लेते हैं, फिर तुम और हम अलग हो गए। पर एक भगवान है जो कितने भी गलतियां हो, चलो दूसरे जन्मों की तो हमें याद भी नहीं है, इसी जन्म की बात ले लें, इसी जन्म तो छोड़ो, जब से ज्ञान में आए हैं, ज्ञान जानने के बाद भी हमने बहुत गलतियां की है, हाँ या ना, ज्ञान जानने के बाद भी गलतियां की, फिर भी बाबा जो है दिल से अपनाया, खुश करने के लिए नहीं अपनाया। तो हम बाबा के बच्चे, द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, भगवान के हम प्रतिबिंब है, फरिश्ता जो है ना, परमात्मा के, ईश्वर के प्रतिबिंब को फरिश्ता कहते हैं ना। तो सबसे पहला जो फीलिंग हम अपने अंदर डेवलप करना है, प्रैक्टिस का अभ्यास करना है, कोई कैसा भी हो उस आत्मा को दिल से अपनाए, अपनाने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पकड़ो गले लगो हा हा हू, वो दूर भी भले हो पर दिल से उनका अपना मानो, वो कैसा भी है वो अपना है, क्योंकि वो शिव बाबा का बच्चा है। अपनापन, ब्यूटीफुल फीलिंग, वो कैसा भी है ये अंडरलाइन। सेकंड, कोई कैसा भी लोग व्यक्ति हो, चाहे लौकिक चाहे लौकिक, स्नेह और समय पर सहयोग की भावना, स्नेह की भावना रखे, मोह की भावना नहीं, मोह और स्नेह में बहुत अंतर है, ठीक है ना। शिव बाबा मोह का सागर है कि प्रेम का सागर है? बहुत अच्छी बात। तो हमें स्नेह के, प्यार की भावना रखना है, सहयोग की भावना रखना है। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर आज के समय में, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, थोड़ा उनकी एनर्जी लो है, ना खुश है, वो खुश नहीं हो, मुस्कुरा भी नहीं पा रहा है, कारण हजारों होंगे, उनके कोई और बातें होंगी, अगर ऐसे व्यक्ति को हम हिम्मत देते हैं, उमंग उत्साह में लाते हैं, बहुत बड़ी सेवा है ये। बेशक हम बहुत बड़ी बड़ी भाषण करने के लिए चांस न मिलता हो, हमें स्टेज पर आने के लिए भी चांस न मिलता हो, हमको कोई जानता भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक कोने में बैठे हैं, पर अगर हम सबके प्रति दिल से सहयोग की भावना, अपनापन और रखते हैं, बेस्ट सेवा है, द बेस्ट सर्विस। उस सेवा में बाबा गिनती अकाउंट में डाल देगा। सहयोग और उमंग उत्साह दिलाने वाले, हिम्मत दिलाने वाले भावना। चौथी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, क्षमा भाव। जब तक हम किसी को, हमने देखा उस व्यक्ति ने गलत किया, मुझे मालूम है उस व्यक्ति ने मुझे ही दुख दिया, मुझे रुलाया, कष्ट दिया, फिर भी मैं उस आत्मा को क्षमा कर सकूं, बेस्ट है। आपको पता है भगवान का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है क्षमा। गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। कैसे भी है आत्मा, भगवान क्षमा करता है। और हम ऐसे बाबा के बच्चे, हम छोटी छोटी बातों को क्षमा नहीं कर सकते। हमें इसलिए नहीं क्षमा करना चाहिए क्योंकि वो क्षमा योग्य है। कई बार हम इसलिए भी क्षमा करना है क्योंकि उस आत्मा को क्षमा करने से वो मेरे मन से निकल जाएगा। जब तक उस व्यक्ति को हम क्षमा नहीं करेंगे ना, वो मेरे मन में बैठा रहेगा, पूरा जगह लेके बैठा रहेगा। इसलिए उसको क्षमा करो, वो मन से निकालो। और जब तक यहां लोग बैठे हैं ना, तो भगवान कहां बैठेगा? आपको पता है हमारे मन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हाँ या ना? बैठे क्यों नहीं बैठे? किस किस के मन में लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं, गिन सकते हैं आप? जब इतने लोग यहां बैठे हैं, भगवान कहां बैठेगा? जगह ही नहीं है। जब इतने लोग यहां बैठे हैं, एक मन ही है इंसान के, प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारा, अपना जो है संपत्ति है, इसके अलावा हमारा अपना कुछ नहीं है। इसलिए तो बाबा कहते, तुम अपना मन दे दो मुझे, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बाबा को? मन मना भव, मन दे दो, क्योंकि वही एक चीज है जो आपका अपना है। तो उस मन में 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग बैठा होगा, तो वो मेरा अपना प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दुख दे के जा रहा है, उसको याद कर रहे हैं, वो गया तो ये आया, ये आया, ये क्या है, प्लेग्राउंड है क्या? कितने लोग आते जाते रहते हैं, हम बैठे योग में, लाल बत्ती है, बहुत सुंदर गीत बज रहा है, शुरू हुआ, हम बाबा के शुरू योग शुरू करते हैं अच्छे अच्छे संकल्प से, एक मिनट से भी कम में वो लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कुछ भी नहीं है तो व्यर्थ, ये क्यों बैठा है भाई, वो ऐसा, वो भी आ गया क्या? अच्छा वो तो आता, क्लास में भी नहीं आता, भट्टी में आ गया, ये आइए, इसको ऐसे चप्पल क्यों पहना है, देखो इतने पुराने हैं, और ऐसे फालतू शुरू हो गया, कुछ ना कुछ तो चलती रहती है मन में। ये इसके लिए हम नहीं बैठे हैं, और ना ही ये साधना है। ऐसे स्पीड में हम कहां पड़ेंगे, बनेंगे फरिश्ते? हम तो इन चप्पलों में, इन बागों में, उधर में, नवीन भाई में फलाने भाइयों में इसी यही घूम रहे, कहाँ ऊपर जा रहे हैं? फरिश्ता तो उड़ता है ना, हम तो एक इंच भी ऊपर नहीं गए। हजार बार सालों साल हम बैठ करके बोलते रहे परमधाम निवासी, परमधाम निवासी, सूर्य चांद से ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, कहीं नहीं जा रहे हम, आसमान तक भी नहीं गए, इधर ही घूम रहे। इसलिए हमारी भावनाओं को शुभ रखना हर व्यक्ति के प्रति बहुत आवश्यक है। पांचवी बात है कल्याण की भावना। सभी आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना, कोई भी हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, अच्छा हो, बुरा हो, मेरी भावना में, मेरे भावनाएं तो मेरे है ना, तो मेरी भावनाएं कभी खराब नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे ड्रेस खराब हम पहनना चाहेंगे, चाय गिरा हुआ, सांबर गिरा हुआ, दाल गिरे हुए पहनेंगे ऐसा ड्रेस पहन के घूमेंगे नहीं ना। तो जब इस ड्रेस का हम ध्यान रखते हैं तो मन के ऊपर कोई कुछ भी गिरा के जाए उसको साफ रखना मेरा अपना धर्म है। मन को खराब करने के लिए 100 लोग होंगे पर उसको ठीक करने के लिए एक ही व्यक्ति है, और वो कौन? और इन पांचों ही भावनाओं का जो रूट है वो है आत्मिक भाव, आत्मिक भावना, और ये है लाइफ लॉन्ग हमें अभ्यास करना है। क्यों? ऐसा कोई भी मुरली नहीं होंगी जिसमें बाबा ये नहीं कहते बच्चे आत्मभिमानी बनो, देह को भूलो, अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। क्योंकि अपने को आत्मा समझने से ही हमारी भावना एलिवेट होते हैं, उड़ते ऊपर की ओर चलते हैं। और शिव बाबा तो परमधाम निवासी, तो आत्मा उड़ने की जो शक्ति है वो आत्मिक भावना में है, और कोई भावना में आत्मा उड़ नहीं सकती। इस धरती के आकर्षण से, व्यक्त भाव से, अच्छे बुरे से भी हम ऊपर उड़ना है वो ताकत आत्मा भाव में समाया, आत्मा भावना से दूसरों को देखने में आएंगे। भाव और भावना टू डिफरेंट थिंग्स। भावना माना फीलिंग्स, ध्यान से सुनेंगे, भावना माना फीलिंग्स, भाव माना इंटेंशन, उद्देश्य। हर कार्य के, हर सोच के पीछे एक भाव होता है, उद्देश्य होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये पांचों ही भावनाएं हमारे अंदर है, ये छठा भावना जो क्षमा भाव, ये छह प्रकार के अगर हमारे अंदर भावना है तो मैं फरिश्ता, इसको कहते शुभ भावना। इन छह भावनाओं में कोई भी भावना हमारे अंदर नहीं है उसको व्यक्त भाव कहा जाता है, अर्थात अशुभ भाव कहा जाता है। सिंपल सी बात, अगर मैं आत्म अभिमानी नहीं हूं तो क्या हूं? देहाभिमान है। सिंपल सी बात, सीधी, स्ट्रेट। ये मूल है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा हर रोज अभ्यास करने वाली आत्मस्वरूप में टिकना, आत्मस्वरूप में दूसरों को देखना और शुभ सोचना, शुभ भावना रखना। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस प्रकार की भावना मेरे अंदर है, मुझे सामने वाला, सामने वालों के सोच, बोल, कर्म उसी भाव से समझ आती है। भावनाओं के, फीलिंग्स के आधार पर हमारी भावना डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे अंदर ईर्ष्या है, ठीक है ना। अगर मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना है तो आपके प्रति मेरी ईर्ष्या है, तो आप कुछ भी करोगे, मेरे लिए अच्छा भी करोगे, मैं आपको किस भाव से देखूंगी? मेरे भाव आपके प्रति बदल हमेशा ही बदलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग अपार्थ या गलत फहमी के शिकार हम हमेशा रहेंगे, शक की नजर से ही मैं देखूंगी। आप हजार कोशिश कर लो मुझे खुश करने के लिए, मैं नहीं समझ पाऊंगी आपके भाव, क्योंकि मेरी भावना आपके प्रति गलत है, तो मैं आपके मेरा भाव भी आपके प्रति गलत होगा। भले आप मेरे प्रति अच्छी भावना रखो, अच्छी भाव से करो, पर मेरा आपका हर जो काम है मैं गलत ही शक की नजर से देखूंगी। ये पूरा की पूरा देहाभिमान की निशानी है। आप में से कौन कौन है जो किसी ने आपको हेलो कहा, बड़े मुस्कुरा के बड़े खुशी से ओम शांति हेलो कहा? कौन है आप में से? सोचना शुरू करिए, इतना हंस के प्यार से आज क्यों ओम शांति कर रहा है? सोचते हो? वैसे तो नहीं करता है, आज तो बहुत उत्साह से उमंग से खुशी से ओम शांति हेलो गुड मॉर्निंग भी बोल दिया, क्या बात हो गई? सोच होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, होता है। किस किस के होते हैं? होते हैं। चलो वो व्यक्ति कल आपको देखते हुए भी आपके सामने से गुजरा और आपको देखा भी नहीं, फिर मन चलेगा? चले क्यों, क्या हुआ? वो तो ओ हेलो ओम शांति भी नहीं बोल के जा रहा, अरे मेरे सामने से गया, कल मेरे घर में समोसा खा के गया और आज हेलो भी नहीं कर रहा है, क्या हुआ होगा? और एक बार सोच करके खत्म नहीं होगी ये कहानी, शुरू ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा, उनके साथ बैठ करके बात करने के बाद शायद उनमें ये बदला हुआ होगा, तो जरूर वो उनको कुछ अरे बाप रे बाप, यहां तो बरसात जैसे नो वो होता है, शुरू ऐसे बरसा भाड़ संकल्पों के, चूंकि व्यर्थ है। किया किया नहीं किया, नहीं किया इट्स ओके। हमारे भाव व्यक्तियों के प्रति तब बदलते हैं जब हमारे भावना शुद्ध होते हैं। तो भावना में भी चार प्रकार के हैं, एक है शुभ भावना, एक है अशुभ भावना। अशुभ भावना किस क्या कह किसको कहते हैं? जिसमें ये छह प्रकार की भावना नहीं होंगे उसको अशुभ भावना कहते हैं। आप समझ गए, इन पांच भावनाओं के छह प्रकार के भावनाओं के विपरीत होंगे हमारी भावनाएं तो उसको अशुभ कहेंगे, अशुद्ध कहेंगे। ओके, तो अशुभ भावना, शुभ भावना, व्यर्थ भावना और एक है साधारण। हम में से तो अशुभ तो अभी नहीं होंगे, व्यर्थ भी अभी काफी हद तक कम हो गया, पर साधारण बहुत है अभी। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ये व्यर्थ में भी आता है। चलो व्यर्थ से भी हम ऊपर उठ करके साधारण भी चले, इसमें आत्मा को शायद नुकसान ना पहुंचते हो, इसमें नुकसान नहीं होंगे, मगर ये हमारे हम कौन हैं और हम क्या सोच रहे हैं ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं है ब्राह्मणों के। लक्ष्य क्या है, किस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं, कितना ऊंच लक्ष्य भगवान हमको सिखा रहे हैं और पढ़ा कौन रहा है, और हम सोच क्या रहे हैं, ये मिसमैचिंग है। एक ब्राह्मण फरिश्ता बनने वालों के लिए साधारण साधारण सोचना, आप मान लीजिए राजाधिराज महाराज द ग्रेट है जी, विक्रमादित्य जिसको कहे, वो साधारण टी शर्ट और जीन्स पैंट पहन के कैसा लगेगा ना? हालांकि वो अच्छी चीज है, पर सूट होगा? आप कल्पना करके देखें, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य द ग्रेट, अशोका द ग्रेट चक्रवर्ती है, वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आए, अच्छा लगेगा? खराब नहीं है, वो खराब चीज नहीं है, पर राजा महाराजा के लिए वो ड्रेस सूट होगा? जैसा व्यक्ति जिस स्टेटस में होगा उसका वस्त्र भी वैसा ही धारण होगा। तो हमारा संसार में चारों युगों में सबसे ऊंचा स्टेटस है, सतयुग के देवताओं से भी ऊंचा स्टेटस है ब्राह्मण फरिश्ता, अल्टीमेट स्टेटस है जिसको बाबा चोटी कहते हैं ना। तो ऐसा स्टेटस में रहकर अगर हम साधारण साधारण चीज सोचे, बेशक इसमें कोई नुकसान ना हो पर फायदा भी तो नहीं है ना, और ये हमें शोभा नहीं देता। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दें, नेगेटिव की तो बात ही छोड़ दें, पर साधारण सोचना भी ये हमारे शान के खिलाफ है। हमारे जो टाइटल है ब्रह्म कुमार कुमारी, शिव बाबा के परमात्मा के संतान, ईश्वरीय संतान, इस टाइटल के खिलाफ है ये। अगर हम ये रोज याद रखेंगे तो आत्मा खुद ब खुद उड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि योग के लिए द फंडामेंटल फीलिंग है स्वमान का, कि मैं कौन हूं, अपना मान बढ़ाए। हम तभी उड़ेंगे जब कोई और हमको हमारा मान सम्मान करेगा कि पता है आप, अरे आप बहुत अच्छे हैं, आप तो फरिश्ता है, आप तो देवता है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो जैसे जैसे आपके बारे में बोलते लगेंगे हमको लगता है पंख भी आ गया, हम उड़ना भी शुरू हो गया। दो घंटे के बाद वही व्यक्ति आकर के बोले आप तो कोई काम के नहीं है, आप वो है आप, फिर वो पंख आपको लगे कट गया, फिर धड़ाक से ऊपर से हम गिरने लगे, क्योंकि किसी और ने हमें मान दिया तो हमको लगता हम बहुत ऊंच है। सामने वाला मान देना बंद किया हमको लगता हम तो कुछ भी नहीं है। तो स्वमान का अर्थात कोई और मान दे या ना दे, मेरा अपना मान भगवान का दिया हुआ है, हमेशा रहेगा, ये अनंत काल तक ये मान रहेगा, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ। जैसे ईश्वर अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का मान भी अविनाशी है। बात यह है कि हम ये स्थूल भाव में आकर, भाव स्वभाव के टक्कर में आकर हम अपना स्व का मान भूल गए हैं। इसलिए तो इसको अभिमान कहते हैं ना, जो इंसान अपना खुद का भगवान का दिया हुआ मान सम्मान को भूल जाता है वो अभिमान में आता है। वो कौन सा अभिमान है? देह का अभिमान। देह का अभिमान माना क्या? इसमें दो अर्थ है, अभी अभी मुझे मान दो, अभी अभी मुझे सम्मान दो, और ये इसलिए अभी अभी मुझे सम्मान औरों से मैं मांगती हूं क्योंकि अभी अभी मैंने अपने को देह माना, आत्मा नहीं माना। अभी अभी मैंने अपने आप को देह माना तो अभी अभी मैं देह अभिमान में आ गई। तो हम क्या मानते हैं उस पर मेरा मान शुभ है, शुद्ध है, अशुद्ध है, अशुभ है, ये निर्धारित होता है। तो ये सारा हमारा अंदर की दुनिया है। तो हमें बाहर से ड्रेस चेंज कर देने से, कुछ और कर देने से हम ब्राह्मण नहीं बनते, देवता नहीं बनते, फरिश्ता नहीं बनते। ये अंदर की जो इतनी बड़ी दुनिया है उसको करना है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने ये कहा है कि देखो प्रकृति में एक बहुत सुंदर एक स्वाभाविक एक शक्ति है। जैसे ये गुलाब किस किस को पसंद है? रोजेस, वेरी गुड। और क्यों पसंद है? एक है उसकी खुशबू, दूसरा सुंदरता, तीसरा सॉफ्टनेस ना, कितना कोमल है। अच्छा किस रंग के गुलाब पसंद है आपको जी? कौन सा? लाल वाला? क्या बात है क्यों सफेद वाला गुलाब पसंद नहीं है? एनीवे अभी गुलाब जो है, गुलाब के जो फूल है ना, सॉरी उसके इसमें खाद डालते हैं, कोई भी इसमें खाद डालते, और खाद सुगंधित होता है। वो ग्लव्स पहन करके वो खाद को रखते हो, मास्क पहन के ग्लव्स पहन के खाद डालते क्योंकि वो बदबू वाला। बहुत ही आश्चर्य की बात है, जब इतना गंदा वाला बदबू वाला खाद उसको देते हैं, क्या ऐसी मिट्टी में है, क्या ऐसा बीज में है, क्या ऐसी चीज प्रकृति में है, वो बदबू को खुशबू में परिवर्तित हो जाती कर देती है। जो व्यक्ति मास्क नाक पर रुमाल रख करके ग्लव्स पहन करके खाद डाला, जब इसका फूल निकलता है वो नाक पर लगा लगा के उसको सूंघता है। तो प्रकृति देखो ना कितना मजेदार है, कितना पावरफुल है, जबकि ये प्रकृति तो तमोप्रधान है ना, कलयुगी है ना। बदबू वाली चीज को ऐसे क्या अंदर में होता है जो वो खुशबू में परिवर्तित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आप तो प्रकृति पति हो, तो आत्मा में भी वो अंदर अंदर वो ताकत है जो कोई कैसा भी भाव हमारे प्रति रखे, गलत भाव रखे, गलत भावना रखे, द्वेष भावना रखे, ईर्ष्या रखे, पर मैं आत्मा में, मुझ आत्मा में जो प्रकृति पति आत्मा हूं, मुझ आत्मा के अंदर भी वो ताकत है जो आप क्या भी देंगे मैं उसको खुशबूदार बना सकती हूं। लेकिन हमने उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं हमारे अंदर वो ताकत भी है। तो हम क्या कहते, क्योंकि हम ये देह अभिमान में हैं, हमको लगता आप जो देंगे हमको भी वही लौटाना है। ईट का जवाब, ईट का जवाब किससे? हाँ, कौन कौन करता है ये? आप छोटे पत्थर देंगे हम बड़े पत्थर देंगे, हम कोई कम है क्या? अरे आप हमको ऐसा, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम आपको ऐसे साधे में नहीं लेना, आप इतने से पत्थर देंगे हम इतना बड़ा देंगे, आप कम नहीं समझना, हम कोई कम नहीं। इसको कोई बहादुरी नहीं कहते हैं। वो भले पत्थर देंगे पर हमें क्या देना है, ये है ईश्वरीय बच्चों की, ब्राह्मण आत्माओं की, फरिश्ता बनने वाले आत्माओं की निशानी। मैं हमेशा ये एक छोटी सी बात सबको बोलती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके पास एक बास्केट है, आपके पास क्या है? राइट, आपके बास्केट में लड्डू है। आपके बास्केट में क्या है? किस किस के पास बास्केट है? मान ले, अभी नहीं है मुझे मालूम है, मान लिया जाए हम सबके पास बास्केट है और उस बास्केट में भर करके स्वादिष्ट लड्डू है, और वो ऐसे लड्डू है जितना देंगे ना उतना भरता जाएगा, जैसे अक्षय पात्र होता है ना, वो ऐसे ऐसे एक 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 जादुई हम सबके पास बास्केट है जिसमें बहुत स्वादिष्ट लड्डू, जितना ज्यादा लड्डू देंगे उतना ज्यादा वो भरता जाएगा। ठीक है, हम सबके पास क्या है? हाँ, आवाज से बोले, क्या है? और इस बास्केट में क्या है? किस किस के पास है? हाँ, जिनके पास है वो हाथ तो उठाए। चलिए, अच्छा अभी मंजू के पास एक बास्केट है, उसमें ना पत्थर है, मिट्टी है, मिट्टी, वो भी काली मिट्टी। मंजू के पास क्या है? बिचारी, उसके बास्केट में काली मिट्टी है और पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है, कंकर है। अभी मैं आपको क्या दूंगी, क्या दूंगी, क्यों दूंगी? बिचारी मेरे बास्केट में, आप क्या दोगे मुझे, क्या दोगे, दोगे? चलो मैंने एक बार आपको, आपके ऊपर काली मिट्टी दिया, पत्थर डाला, आप मुझे क्या देंगे? जो मैं दोबारा वो दिया, तीसरे बार, चौथे बार, दस बार मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मेरे बास्केट में तो वही है। प्रश्न, दस बार ही आप मुझे लड्डू दोगे? नहीं, नहीं देंगे कि दो बार के बाद कहेंगे अच्छा हम तीन बार लड्डू दिया आप मिट्टी दे रहे हो, रुक जा हम आपको आप काली मिट्टी दी में महाकाली जो है तो अपना लड्डू वाला बास्केट बाजू में रख दिया, जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसको ढूंढना शुरू किया, कहाँ मिलेंगे और इससे गंदा इससे काला मिट्टी कहाँ मिलेगा वो ढूंढना शुरू किया। इस ढूंढने में इतना मग्न है, एक दिन ऐसा आएगा हम पूर्ण रूप से भूल जाएंगे मेरा भी एक बास्केट है जिसमें स्वादिष्ट लड्डू है और वो जितना देंगे उतना भरेंगे, और मैं उस बास्केट को किनारा रख दिया, मैं भूल ही गई। और एक और समय आएगा जो एक लड्डू कोई और मुझे स्वादिष्ट लड्डू दे दे इसके लिए हम तरस जाएंगे और ये भूल जाएंगे मेरे ही पास अक्षय पात्र जैसा पड़ा है, ये भूल जाएंगे ये स्वमान है, मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, हम भूल जाते हैं। और हम दूसरों के कर्म दूसरों के व्यवहार देख करके कंपेयर करते, आपने ये किया तो मुझे भी ये करना चाहिए, आपने ऐसा बोला तो मुझे भी ये करना चाहिए, इसमें इस कंपैरिजन के चक्कर में हम अपना स्वमान अपना इज्जत अपना जो गौरव अपने सब कुछ गवा देते हैं। इसको कहते हैं देह अभिमान। और फिर शिव बाबा आते हैं बोलते बच्चे आपके पास क्या है क्या है क्या है, खाली हो गया लड्डू, चलिए अब के बाद कोई कुछ भी हमको देंगे, पत्थर दे ईंट दे कांटा दे मिट्टी दे, हमें क्या देना है क्यों देना है, वेरी गुड बहुत अच्छे। अब घर जाओ, आपको है बहुत सारे लोग कांटे देने वाले खड़े हैं, महारानी गई है 3-4 दिन से, सारा घर का काम हमको करना पड़ रहा है, हाँ जी ये भट्टी पता नहीं क्या कहाँ जाती है, माउंट आबू जाके आई है, और जाते ही शुरू है लड़ाई झगड़ा वो ये काम काज, फिर क्या करेंगे उनको क्या देंगे ये है फरिश्ते की निशानी। देखो जैसे हम सभी बहुत सारे आजकल जो है ना डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आजकल लोग जो है ये एलोपैथी मेडिसिन खाना पसंद नहीं करते, पता है कोई होम्योपैथी दे रहा है, कोई हीलिंग के पास जा रहा है, कोई नेचुरोपैथी करता है, तो बहुत सारे हैं जो लोग हीलिंग करते हैं, भाई हमारे शरीर के सारे ये हील हो जाए, बहुत सारे म्यूजिक हीलिंग है फलाना कलर है, बहुत सारी चीजें हैं। पर शिव बाबा हमको अपने फीलिंग्स को हील करने की बहुत सुंदर तरीका सिखाते हैं, आपको बाद में बजा दो, लास्ट में ना एक ही बार बजा देना, आपको पता है ये ध्यान से सुनेंगे, 63 जन्मों के दुख के दर्द के कष्ट के धोखे के फीलिंग्स को लेकर अपमान के फीलिंग्स को लेकर हम यात्रा कर रहे हैं, और हम ब्राह्मण तो बन गए लेकिन हमारे अंदर वो दुख के वो दर्द के वो अपमान के वो भय के वो फीलिंग्स अभी भी है हमारे अंदर, और जब तक ये दुख के फीलिंग्स को हम खुद अपने ही मन के फीलिंग्स को हील नहीं करते हैं आत्मा उड़ नहीं सकते, मैं लिखत में दे सकती हूं, क्योंकि संसार में सबसे भारी चीज है दुख, जरा सा भी दुख मन में है वो नीचे नीचे के ओर पाताल की ओर दस्ता चला जाता है, मन बेचारा उमंग खो देता है, उस ज्ञान भरा है दिमाग में, मुझे मालूम है क्या करना, मुझे ये भी मालूम है ये काम नहीं करना, पर वो ना करने की ताकत ही मुझ में नहीं है, क्योंकि वो दुख जो है वो फीलिंग होने के कारण कहीं ना कहीं मैं किसी और को दुख दे ही देती हूं, जबकि मुझे पता है दुख नहीं देना है, वो अशुभ है, दुख मन में रखना अशुभ फीलिंग है, अशुद्ध फीलिंग है, अशुद्ध फीलिंग फरिश्ता नहीं बन सकता, उड़ ही नहीं सकता, बाबा की क्यों बोलते, जान जाए खुशी न जाए। कई अव्यक्त मुरलियों में बाबा ये क्यों कहते हैं कि खुशी ऐसी ताकत है जो उड़ने के लिए हमको ताकत देते हैं। जैसे रॉकेट उड़ाते हैं ना, बहुत सारे फ्यूल चाहिए, बहुत सारे एनर्जी चाहिए, बहुत सारे फ्यूल को करके फिर उसको प्रेशर इतना होगा उससे वो आसमान से पार वो रॉकेट उड़ सकता है। और आत्मा सूर्य चांद से भी, सितारों से भी, इस संसार के आकर्षण से भी उड़ करके परम धाम तक जाए, आप सोचो मन कितना सुखद, कितना शांत मन को होना होगा ताकि वो मन उड़ सके। सारे हमारा योग मन बुद्धि की यात्रा है ना, शरीर से थोड़ा ही है, शरीर से तो हमको हिलना भी नहीं है। शरीर भी आत्मा तब भूल सकती है जब अंदर खुशी हो, सुख हो, मन शांत हो, तो उड़ेंगे। हम दुख लेके बैठे, उसने ये किया, उसने क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, चलो किसी और ने हमें दुख ना दिया होगा। कई बार हम अपने आप से भी गिल्ट फीलिंग में बैठे हुए होते हैं, मैंने बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भार है, इट्स अ बर्डन। प्लीज मन में जरा भी दुख लेके नहीं बैठो। मुझे याद है बचपन में, मैं लास्ट ये बोल करके खत्म करूंगी, मैं छोटेपन में मैंने कहा कि बाबा मम्मा को तो हमने देखा नहीं, हम तो दीदी, बड़ी दीदी मनमोहिनी, दादियों के पालना में पले हैं। तो हम छोटे थे, पांडव भवन के आंगन में हम खेलते थे, मेरे को ठीक से याद नहीं, 70s की बात है। तो किसी ने मुझे डांट दिया, जोर से डांट दिया, जबकि मैंने कोई गलती नहीं किया। अभी हम तो कितने ज्ञान में, इतने परिपक्व तो थे नहीं, बच्चे थे, छोटे थे, तो अभी क्या करेंगे, भी कोई डांटेगा बगैर आपका कोई गलती के, बच्चा रोएगा ना। तो मैं रोई, रो करके फिर अभी कोई हमारे आसपास कोई नहीं है, तो हमारा तो भगवान ही है। मैं पांडव भवन के बाबा के कमरे में जाके रोना शुरू किया, अभी सबके सामने तो रो नहीं पाएंगे ना। उन दिनों में दादी आंगन में बैठा करती थी, तो बड़ी दीदी मनमोहिनी ने देखा कि मुझे, मैंने ऐसे जोर से तो नहीं रोई थी, पर वो तो देख लेते ना, मैं रो के बाबा के कमरे में बैठी। तो दीदी आई, मेरे को बोले लाल इधर आओ, मुझे बाबा के कमरे से बाहर उठा के लाए, बोले तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा क्या, अभी कोई नहीं पूछता है तो रोना धोना पोछ पाछ के खत्म कर देते, कोई पूछता है तो और रोना निकलता है ना। तो मैंने कहा उसने डांटा मुझे इसलिए रोना आ रहा। तो दीदी ने कहा तुमको पता है तुमने कितनी बड़ी गलती किया, दो गलतियां किया, एक है तुम रोते हुए सूरत को लेकर के बाबा के सामने बैठी हो, बाबा तुम्हारा सूरत भी नहीं देखेगा, बाबा को रोता हुआ चेहरा पसंद ही नहीं है, तुम कितना भी रो लो बाबा तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखेगा। सबसे बड़ी गलती भगवान के सामने तुम ऐसे सूरत लेके गई। दूसरी गलती ये है, बाबा के कमरे में कौन बैठता है, किस लिए बैठता है, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, प्रेम लेने के लिए, बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए बाबा के कमरे में बैठते हैं। और तुम वो दुख रोने वाली भावनाओं को लेकर के वहां रो रही हो, और इतने पूरे वातावरण को तुमने अशुद्ध करके आई। मैंने कहा पहले से तो डांट खा के आई हूं, और ऊपर से दीदी ने उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये क्या बात है, दीदी बोल क्या रही है। पर जैसे जैसे मैं ज्ञान को समझा तो मुझे इस अंदाजा लगा कि दीदी दादियों ने अपनी फीलिंग्स पर कितना कंट्रोलिंग था उनका, क्या जबरदस्त शुभ भावना, किसी के भी प्रति अशुभ नहीं वो मन में रखते ही नहीं थे। अभी फूल के ऊपर, फूल के पंखड़ियों के ऊपर आप पानी डाल दो फिसल जाएंगे, वो होल्ड नहीं करेगा। गंदा पानी डालो, अच्छा पानी डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिसल जाएंगे। मन को ऐसे हम शुभ भावनाओं से ऐसे भरना चाहिए, दूसरों के किचरा उस पर टिके ही ना। हम छोटी सी छोटी बात किसी ने कह दिया, हम कहेंगे हम तो जिंदगी भर उसको याद रखेंगे, आपने ऐसा बोला, हम नहीं भूलेंगे। तो क्या तीर मारा, नहीं बोला तो किसको नुकसान हो रहा है, जिसने बोला वो खा पी के कराटे मार के सो रहा है, जिसने सुना उसका नींद उड़ गया, क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, ये योगी नहीं है। अगर योगी ही नहीं हो पाएंगे फरिश्ता कैसे होंगे। इसलिए प्लीज ये सारी बातें, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या हमारे लिए सोचता है, कौन क्या हमारे लिए समझाएंगे, छोड़ो उसको, वो जाने, उसका मन है सोचे ना जो मर्जी, मुझे मेरे लिए क्या सोचना है, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है। मैं दूसरों के प्रति क्या सोचना है, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, बात खत्म। मुझे किसी के कहानियों में, किसी के कर्मों में जाना अलाउड ही नहीं है। आप जानो, आपका मन जाने, आपका कर्म जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा स्पिरिट जो संकल्प है, अगर इस तरह के हम बनाए रखेंगे तो हम बहुत जल्दी फरिश्ते बन जाएंगे। ओम शांति। हम बाबा की याद में बैठेंगे, जिनको बहुत आवश्यक हो वही उठेंगे, अन्यथा हम 7:30 तक ऐसे बैठेंगे जैसे हमें संसार में है ही नहीं। यहां कोई व्यक्ति का आना जाना बंद हो सकता, हो सकता, कौन कौन करेगा? वेरी गुड। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में तो बैठे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट बाबा की याद में बैठ के, मुझे तो उठने दो, मैं उठूं कि बैठी रहूं? आ तो फिर 1 मिनट आप बैठ जाए। हाँ, एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, इसके बाद हम 7:30 तक ऐसा योग लगाएंगे, हमें संसार से ऊपर सबके प्रति शुभ भावना, सबको क्षमा करो, छोड़ो, मेरे मन को ऊपर से उड़ा करके बाबा के प्यार में मग्न हो जाना चाहिए। हिले भी नहीं, मैं देखूंगी, कोई भी हिलेंगे भी नहीं, ऐसे योग में बैठना। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।